Savior. Om Shuddhatmane Namaha. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahunam. Nittaviyattakammam. Viram Namiyunapatta Sauvattam. Anubhagasya Vihattim. Jehovah Samparuvemo. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति वृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 46 पर आ गए हैं। अभी 28 पृष्ठ पर जो विशेषार्थ है नीचे का, उसमें हमने करेक्शन की है। वहाँ जो उत्कृष्ट लिखा था उसको अनुत्कृष्ट लिखना है कि देखो 28 पृष्ठ निकालना, वहां नीचे से दूसरी लाइन, मात्र शुक्ल लेशा में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल, उत्कृष्ट के बदले जघन्य काल अंतर्मूर्त है। ये ऊपर बात मूल में आई थी, विशेषार्थ में वो उसका जघन्य के बदले उत्कृष्ट हुआ है, क्योंकि इस लेशा में अनुत्कृष्ट के बाद पुनः उत्कृष्ट की प्राप्ति संभव नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं अपने 46 पृष्ठ पर। हम यहाँ अंतर देख रहे, एक जीव की अपेक्षा अनुभाग विभक्ति का अंतर। मार्गणाओं में अभी वेद मार्गणा की बात चलेगी अपनी। वेद की अपेक्षा स्त्री वेदियों में मुनि कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है, तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। कहीं भी उत्कृष्ट जो बांधने वाला है, जघन्य इन्हें अनुत्कृष्ट होने के बाद फिर अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट बांध सकता है, और उत्कृष्ट अंतर सौ पृथक्त्व पल्य है। ये स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल है। उसके शुरुआत में एक बार उत्कृष्ट बांधा है, फिर अनुत्कृष्ट में रहा, और अंत में जाके फिर उत्कृष्ट किया, तो ये उत्कृष्ट का अंतर हुआ। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है। पुरुष वेदियों में ओग के समान यानी अंतर्मूर्त। पुरुष वेदियों में मौनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, ये तो दोनों के लिए समान है, और उत्कृष्ट अंतर सौ पृथक्त्व सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है। नपुसक वेदियों में मौनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। ये उत्कृष्ट अंतर में ही जो डिफरेंस है सब में, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। ये तो हमने देखा, नपुसक वेदी कोई है, पंचेंद्रिय में है, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया है, एकेंद्रिय में जाता है, अभी वहाँ नपुसक वेद के साथ इतने काल तक रहेगा, बाद में पंचेंद्रिय में आगे आके फिर अधिक बंध करेगा। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है। अपगत करना, अवगत हुआ है। अपगत वेदियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का अंतर नहीं है, अपगत वेदी में जो उत्कृष्ट के साथ उनके लिए उत्कृष्ट, तो उनका उत्कृष्ट रहेगा और अनुत्कृष्ट वाले का अंत नहीं, दो बार नहीं होगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट हाँ दोबारा उत्कृष्ट नहीं होगा। विशेषार्थ कमी कर। उपशम श्रेणी पर चढ़ते समय अपगत वेद अवस्था में प्रथम अनुभाग कांडक के रहते हुए उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है, क्योंकि एक बार अनुभाग कांडक शुरू होता है तो फिर उसका अनुभाग घटते चला जाता है, इसलिए वहां पर मैक्सिमम पाया जाता है। जब तक वो कांडक घात नहीं होता, कांडक चालू है उसके अंतिम समय में घात होगा, इसलिए प्रथम अनुभाग कांडक के रहते हुए उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। यतः ने क्योंकि अपगत वेदी जीव के इस अवस्था की प्राप्ति दो बार संभव नहीं है, इसलिए अपगत वेदी जीव के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के अंतर का निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। कषाय की अपेक्षा क्रोध मान माया और लोभ कषाय वाले जीवों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है। विशेषार्थ उपशम श्रेणी पर चढ़ते समय अपगत वेद अवस्था में प्रथम अनुभाग कांडक के रहते हुए क्या हुआ?
पढ़ लिया ना कि कषाय की अपेक्षा।
हाँ ये हमने पढ़ा था, कषाय की अपेक्षा। पढ़े आगे। कषाय की अपेक्षा क्रोध मान माया और लोभ कषाय वाले जीवों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है। इसी प्रकार कषाय रहित जीवों में भी जानना चाहिए, क्योंकि क्रोध मान वगैरह जो है उसका काल जघन्य अंतर्मूर्त है, उसमें दो बार उत्कृष्ट होना संभव नहीं। उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो जाए और अंतर्मूर्त में फिर उत्कृष्ट हो जाए, ये बात वहां संभव नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानियों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है? जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जैसे अभी हमने नपुंसक वेदियों में भी घटित किया था। वह अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ की तरह है, यानी एक अंतर्मूर्त। विभंग ज्ञानियों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है? जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि वहां जाने के बाद यानी अपर्याप्त अवस्था के पश्चात विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है, तभी उत्कृष्ट बंद किया, फिर बीच में अनुत्कृष्ट रहा और लास्ट में अंत में जाके फिर उत्कृष्ट किया। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओग की तरह है, यानी अंतर्मूर्त। आभिनिबोधिक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है। एक बार जिस अनुभाग के साथ आया है वो उत्कृष्ट है, एक बार उसको अनुत्कृष्ट कर देंगे तो फिर उत्कृष्ट का बंध नहीं होगा, इसलिए अंतर नहीं है। और अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है यानी अनुत्कृष्ट है, अनुत्कृष्ट के साथ उस मार्गणा में है, तो बीच में उत्कृष्ट होने का सवाल नहीं है, इसलिए दोनों का ही अंतर नहीं है। विशेषार्थ उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला जो मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक्त को प्राप्त करता है, उसके आभिनिबोधिक आदि तीन ज्ञानों में उत्कृष्ट अनुभाग होता है। तीन ज्ञानों में, तीन ज्ञान वालों में, उस मार्गणा में। तथा जो वेदक सम्य दृष्टि प्रमत्त संयत मनपरे ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके मनपरे ज्ञान में उत्कृष्ट अनुभाग होता है। यानी ये जो उत्कृष्ट अनुभाग वाला वेदक सम्य दृष्टि मनपरे ज्ञान को प्राप्त होगा, तो उसके मनपरे ज्ञान वाले को उत्कृष्ट अनुभाग होगा। इसलिए इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर संभव न होने से उत्कृष्ट अनुभाग नहीं पाया जाता, वो बात नहीं है। उस विशिष्ट मार्गणा के लिए उसका अपना उत्कृष्ट है वहां पर, परंतु उसका अंतर नहीं है। यानी अनुत्कृष्ट होकर फिर उत्कृष्ट हो, ये बात संभव नहीं है। इसलिए उसका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। यानी किसी भी समय दृष्टि में इनका अंतर नहीं होगा, उत्कृष्ट का भी और अनुत्कृष्ट का भी। संयम की अपेक्षा संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, यथाख्यात संयत और संहिता संयतों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का अंतर नहीं है। विभक्ति का अंतर नहीं है चाहिए था, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा हम अंतर देख रहे हैं ना। अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं, ऊपर क्या लिखा है, उक्कस अनुक्कस नथ्य अंतरम। देखो यहाँ क्या लिखना चाहिए, जैसे हमने अन्यत्र देखा, अभी हमने सम्यक तो संबंधी जो मार्गणा देखी थी उसमें ऊपर से तीसरी चौथी लाइन में क्या लिखा था, ये जो सम्यक ज्ञानी है आभिनिबोधिक वगैरह उनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है। अब यहाँ क्या लिखा है नीचे, उस विभक्ति वाले जीवों का अंतर नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का अंतर नहीं है वाले जीवों, इतना निकाल देना। विभक्ति का आगे का है वो रख देना। क्योंकि एक जीव में वो वालों का ऐसा हो ही नहीं सकता है। असंयतों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। जब असंयत कहते तो पहले से चौथे गुणस्थान तक सभी है, पर यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग असंयतों में मिथ्या दृष्टि के ही होगा, और अंतर्मूर्त अनुत्कृष्ट रह के फिर उत्कृष्ट करेगा। और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है, यानी अंतर्मोत विशेषात। संयत आदि जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग के स्वामित्व का जो निर्देश किया है उसे देखने से विदित होता है इनमें भी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर संभव नहीं है। जो सम्यक दृष्टि की जितनी मार्गणाएं भी हमने देखी ना, ज्ञान संबंधी है, संयम संबंधी, उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसका निषेध किया है। मात्र असंयत जीवों के वह बन जाता है जिसका निर्देश मूल में किया ही है। दर्शन की अपेक्षा अचक्षु दर्शन वाले जीवों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर, सॉरी मैं चक्षु पढ़ा क्या, मैंने चक्षु
चक्षु
मैंने चक्षु ही पढ़ा ना। तो चक्षु दर्शन वाले जीवों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर है। क्योंकि 2000 सागर तो उसकी स्थिति है, तो चक्षु दर्शन ही हुआ और उसने उत्कृष्ट किया, और उत्कृष्ट के बाद उसी पर्याय में रहा चक्षु दर्शन के साथ, और फिर अंत में फिर दोबारा उत्कृष्ट किया, अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है, यानी अंतर मूर्त है। अचक्षु दर्शन वाले जीवों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर चाहिए, अंतर मूर्त है। और चक्षु दर्शन वाले तो सभी जीव है, तो इसमें तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि भी लेना, तो उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करेंगे, फिर अनुत्कृष्ट हो गए और फिर उत्कृष्ट का बंद किया, तो जघन्य अंतर एक अंतर मूल। और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है, एक अंतर्मुख। अवधि दर्शन वालों में अवधि ज्ञानियों के समान भंग है, यानी अंतर नहीं है कहेंगे। लेशा की अपेक्षा कृष्ण नील और कापोत लेशा वालों में मौनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त प्रमाण है। और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ कम 33 सागर सातवें नरक की अपेक्षा, कुछ कम 17 सागर और कुछ कम 7 सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है, यानी अंतर मोड़। 13 और पद्मलेशा वालों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ अधिक 2 सागर और कुछ अधिक 18 सागर है, यानी तेजोलेशा के लिए कुछ अधिक 2 सागर और पद्मलेशा के लिए कुछ अधिक 18 सागर। ये कुछ अधिक में से कुछ कम माइनस कर सकते हैं। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है, यानी अंतर मूर्त। शुक्ल लेशा वालों में मौनीय कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है, क्योंकि हमेशा जितना अनुभाग है वो तो कम बांधेंगे, यानी अनुत्कृष्ट होने के बाद वो उत्कृष्ट नहीं होगा। भव्यत्व की अपेक्षा भव्यों में मौनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। देखो भव्य भी हो गए तो क्या हुआ, जब तक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है तो ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन घटित हो गए। सादी मिथ्या दृष्टि को होगा क्या इतना काल?
नहीं।
कितना होगा? हाँ, कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन। अभव्यों में ये अनुत्कृष्ट का ओ के समान है। अभव्यों में भव्यों के समान भंग होता है, अभी जो बताए वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन वहां भी घटित होगा। सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में मौनीय कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टियों में उष्टि करना बराबर, भव्यों के समान भंग होता है, यानी सम्यक्त्व मार्गणा में एक मिथ्या दृष्टि के ही वो अंतर संभव है, बाकी जो सारे है सम्यक दृष्टि तीनों प्रकार के और फिर सासादन भी और सम्यक मिथ्या तो भी, उनमें अंतर नहीं है। संगीत्व की अपेक्षा संगियों में मौनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट अंतर 100 पृथक्त्व सागर है, ये संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है। असंगी जीवों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है। जो उत्कृष्ट असंगी में उत्कृष्ट कब होगा? जो संगी में से उत्कृष्ट के साथ असंगी में उत्पन्न हुआ है। असंगी ने एकेंद्रिय से सभी असंगी लेना, एक बार वो उत्कृष्ट, फिर वो घात शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा उत्कृष्ट नहीं होगा जब तक वो असंगी ही है, इसलिए उसका अंतर नहीं कहा। और जो अनुत्कृष्ट के साथ ही आया है वो भी अनुत्कृष्ट ही रहेगा, उसका उत्कृष्ट बनने का सवाल नहीं है। यानी जो है उससे बढ़कर भी बांधा, मान लेते हैं एकेंद्रिय में कोई जघन्य के साथ आया और उसने अधिक किया, जघन्य भी अनुत्कृष्ट है और थोड़ा बढ़कर बांधा तो भी अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा। आहार की अपेक्षा, आहार लिखा, आहार यानी आहार मार्गणा की अपेक्षा आहारकों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात विभाग है। ये आहारक रहने का उत्कृष्ट काल जो असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के बराबर है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है। अनाहारियों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग को लेकर अंतर काल नहीं है, क्योंकि अनाहारक में यानी कारमाण का योग में विग्रह गति में, अब जो उत्कृष्ट उसके योग्य उत्कृष्ट के साथ जो आया है तो उत्कृष्ट ही रहेगा, कारमाण का योग में कोई घटने का सवाल नहीं है। और जो अनुत्कृष्ट के साथ आया है वो भी अनुत्कृष्ट ही रहेगा, कारमाण का योग के रहते वो वहां उत्कृष्ट का नहीं बंद होगा, इसलिए कहते उसका अंतर नहीं है। यानी उत्कृष्ट हो जाए और फिर अनुत्कृष्ट हो जाए इतना वहां समय नहीं है। विशेषार्थ शुक्ल लेशा सब सम्यक
का योग भी एक समय के लिए उत्कृष्ट होके पीछे अनुत्कृष्ट हो सकता है, पर नहीं, मगर नहीं होगा।
अंतर नहीं, उत्कृष्ट होगा ना तो अनुत्कृष्ट का एक समय अंतर कहते, उत्कृष्ट होने के बाद वो उत्कृष्ट अनुभाग अंतर्मूर्त तक रहता ही है। उत्कृष्ट बंद किया तो अंतर्मूर्त तक तो उत्कृष्ट रहेगा, फिर नियम से अनुत्कृष्ट होगा, तो इसलिए यहाँ वो भी घटित नहीं होता, दोनों का ही अंतर नहीं है। विशेषण शुक्ल लेशा सब सम्यक्त्व असंगी और अनाहारक मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं होता। ये देखो आपके प्रश्न का उत्तर है, उत्कृष्ट अनुभाग का बंद होता ही नहीं, इसलिए इनमें अंतर का निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग का अंतरानुगम समाप्त हुआ। ये तो हम उत्कृष्ट अनुभाग और उसका अंतर देख रहे थे, अभी जघन्य का देखेंगे। तो ओघ में जघन्य तो दसवें के अंत में होता है, तो उसका अंतर होगा कि नहीं होगा? प्रतिभा ताई आप क्या कहते हैं, अंतर कब कहलाएंगे? जब जघन्य के बाद फिर अजघन्य हो जाए, अजघन्य हो जाएगा फिर दोबारा जघन्य हो जाए, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो क्षपणा वाला है ना। हाँ, अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा मोहिनी कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का अंतर नहीं है। ये जीवों का क्यों लिखते हैं ऊपर? क्या लिखा है? जघन्य अनुभाग विहत्याणम नथ्य अंतरम। जीवों में अंतर नहीं, ठीक है। यानी यही जो अनुभाग विभक्ति वाले जीव है उनमें वो अनुभाग जघन्य का अंतर नहीं पाया जाएगा। एक्चुअली ये अनुभाग का अंतर नहीं है, ऐसा चाहिए विभक्ति। हाँ, जीवों में चलेगा, जब जीवों का अंतर नहीं कहेंगे तो अनेक जीवों की अपेक्षा ऐसा लगता है, यहाँ एक युग की अपेक्षा बात चल रही है। इसी प्रकार सामान्य नार की 49 पेज, सामान्य नार की पहली पृथ्वी के नार की सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच सब मनुष्य सामान्य देव और भवनवासी व्यंतर, भवनवासी और व्यंतर को लिया, ज्योतिषी को क्यों नहीं लिया? हाँ, असंगी उत्पन्न नहीं होते उसमें, इसलिए वो जघन्य वहां नहीं घटित होगा उसमें। तथा सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। देवों में किया ना, वैसे ऊपर देवों जीवों का नहीं, जीवों में ऐसा कह सकते हम। विशेषार्थ, ये नीचे हम विशेषार्थ पढ़े, नीचे का बीच वाला बड़ा पैराग्राफ। मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग क्षपक श्रेणी के दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। उससे दूसरे समय में उस जीव के मोहनीय का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ओग से जघन्य और अजघन्य अनुभाग का अंतर नहीं कहा, यानी ओग में तो अंतर्घटित होगा ही नहीं। अब जहां अंतर्घटित होता है, किसी किसी मार्गणा में घटित होगा तो वहां बताएंगे। आगे आदेश की अपेक्षा से भी जिन जिन मार्गणाओं में उक्त अवस्था में जघन्य अनुभाग होता है उनमें अंतरकाल का अभाव जानना। जैसे कि तीन प्रकार के मनुष्यों में, मनुष्यों में ये दसवां गुण संभव है गुणस्थान, इसलिए उसमें भी अंतर नहीं होगा। सामान्य नार की, पहले नरक के नार की, सामान्य देव, भवनवासी और व्यंतरों में जो हत समुत्पत्ति कर्म वाला असंगी पंचेंद्रिय जन्म लेता है। ये कैसा जीव लिया? असंगी, हत समुत्पत्ति के यानी जिसने अनुभाग का घात कर दिया है, ऐसा असंगी जीव, असंगी के योग्य उसका अनुभाग का घात हो गया है, अब वो नरक में उत्पन्न हुआ, पहले नरक में। तो जब तक उसके वो अधिक अनुभाग नहीं बांधेगा तब तक क्या होगा? जघन्य ही रहेगी सत्ता उसके, तब तक जघन्य अनुभाग की सत्ता रहती है जब तक वह उसे बढ़ाता नहीं है। बढ़ाता नहीं, नहीं, वो उसका अधिक का बंध नहीं होता है। इसी प्रकार जो हत समुत्पत्ति कर्म वाला एकेंद्रिय जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य अपर्याप्त में जन्म लेता है उसके जघन्य अनुभाग होता है। इस जघन्य अनुभाग में वृद्धि होने पर पुनः इन पर्यायों में उसी जीव के जघन्य अनुभाग नहीं हो सकता। उसी जीव की बात है ना, अतः इनमें
तो सामान्य देव और सामान्य नारकी बताया है।
हाँ,
तो सामान्य देव और सामान्य नारकी में तो अंतर हो जाएगा।
क्यों होगा?
ये व्यंतर और भवनवासी में नहीं हो सकता है क्योंकि वो आसंगी की अपेक्षा।
हाँ,
मिनिमम।
हाँ, तो सामान्य में जो हम जघन्य बता रहे हैं।
हाँ,
तो सामान्य में जघन्य किसके होगा? वही है सामान्य ने सभी सभी जिसमें गर्भित है। अब जहाँ कहाँ जघन्य है उसी को हम सामान्य का जघन्य कहेंगे, और विशेष का जघन्य कहना है तो नाम लेकर कहेंगे भवनवासी और व्यंतर।
ज्योतिषी
को नहीं लेना, ज्योतिषी में असंगी उत्पन्न नहीं होते। देखो जैसे हम कहते ना, मैंने उदाहरण बहुत बार दिया, कर्म सामान्य हम कहेंगे, सामान्य अपेक्षा से कर्मों का अनुभाग नहीं, स्थिति
सत्तर कोड़ा।
और विशेष कहना है तो हम कहेंगे मोहनीय की, उसमें और विशेष कहना है तो दर्शन मोहनीय की, उसमें और विशेष कहना है तो मिथ्यात्व की, क्योंकि सम्यक की भी इतनी नहीं हो सकती, अंतर्भूत कम हो जाता है। बांधते नहीं है परंतु उसकी स्थिति तो अंतर्मूर्त कम होने के बाद संक्रमण से भी प्राप्त हो सकती है। तो एक होता है सामान्य में, जिस किसी का है वो सामान्य के लिए उसी का कथन होगा। हाँ, ऐसे यहाँ लेना सामान्य देवों में। इन्हें वैसे हमने क्या देखा, एक इंद्रिय आदि में जो जघन्य किया है ऐसा जीव अन्यत्र उत्पन्न होता है, तो दोबारा वो जघन्य उस वहां नहीं होगा, इसीलिए उसका अंतर नहीं है कहा। तथा दोबारा उषम श्रेणी पर चढ़कर वहां से गिरकर पीछे दर्शन मुनि का क्षपण करके जो मनुष्य सौधर्मादिक में उत्पन्न होता है उसके जघन्य अनुभाग होता है। ये सौधर्मादिक में किसके होता है, वहां तो असंगी उत्पन्न नहीं होते, तो वहां का जघन्य किसको कहना। तो दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के दर्शन मुनि की क्षपणा की है और अभी वो सौधर्म अधिक में ऊपर कहीं भी उत्पन्न हुआ है, वह जघन्य अनुभाग है। वह जघन्य अनुभाग यावत जीवन रहता है, अब यहाँ कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया कहा ना उसके, अतः सौधर्मादिक में भी अंतरकाल नहीं कहा। आदेश की अपेक्षा नारकियों में दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक तक अब यहाँ असंगी का उत्पन्न होना नहीं बनेगा, तो जघन्य कब होगा?
जो विषय योजना करता है,
हाँ, समय की प्राप्ति और विषय योजना, ये दो है जहाँ कांडक घात होते हैं। मुनि कर्म के जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। शुरू में एक बार समय तो प्राप्त किया और फिर अंत में जाके किया, और जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। यानी जघन्य के बाद उसने जघन्य किया ही नहीं, बीच में अजघन्य ही रहा, वो तो जघन्य का अंतर कहलाएगा, और अजघन्य में से जघन्य हुआ उसका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए, जैसे हमने दूसरे नरक से घटित किया है वैसा ही ज्योतिषी में। तिरियंचों में मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। यहाँ असंख्यात पुद्गल परिवर्तन नहीं कहा, असंख्यात लोक यानी जब तक जघन्य नहीं होवे बीच में वो असंख्यात लोक का है। अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है। विशेषार्थ
विकलेंद्रिय में अंतर हो सकता है,
किसमें?
विकलेंद्रिय में, वहाँ पे भी नहीं होगा ना,
वो भी नहीं होगा वहाँ पर, विकलेंद्रिय में भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें जघन्य कौन का किसका होगा, एक इंद्रिय में से जो जघन्य लेकर आया है उतना जघन्य तो वो अपने कारण नहीं हो करेगा। देखो विशेषार्थी यहाँ पढ़ते हैं, दूसरे आदि नरक में जन्म लेकर जो जीव सम्यक दृष्टि होकर अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षपण कर लेता है यानी विषय योजना करता है उसके जघन्य अनुभाग होता है। अंतर्मूर्त के पश्चात सम्यक्त्व से च्युत होकर यदि वह जीव पुनः मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो अजघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है। यानी पहले अजघन्य था, फिर सम्यक तो प्राप्त करके विषय योजना की तो जघन्य हुआ, वापस मिथ्या दृष्टि हुआ तो फिर अजघन्य हो गया, ये तो अजघन्य का अंतर हो गया। और अंतर्मूर्त तक अजघन्य अनुभाग वाला रहकर सम्यक दृष्टि होकर पुनः अनंतानुबंधी का विषय योजन करके जघन्य अनुभाग वाला हो जाता है, यानी दो बार विषय योजना कराना उसको बीच में मिथ्यात्व में लाकर, तो जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है। इसी प्रकार उत्कृष्ट अंतर भी घटा लेना चाहिए, उत्कृष्ट अंतर कैसे होगा? अजगण्य का उत्कृष्ट अंतर बताओ मुझे, अजगण्य का उत्कृष्ट अंतर। हाँ, मिथ्यात्व में से सम्यक दृष्टि हुआ और विसंयोजना की, तो जगन्य हुआ।
और अंत में जाके
फिर संयोजना कब कर, हमें उत्कृष्ट अंतर देखना है ना, अंत में कराना। अंत में जाके उसने वो मिथ्यात्व में गया, अनुत्कृष्ट अजगण्य का अंतर देख रहे हैं ना, विसंयोजना के साथ रहा
और
अंत में मिथ्यात्व में गया, तो अजगण्य हुआ। और जगन्य का अंतर कराना है तो पहले जगन्य हुआ था विसंयोजना में, मिथ्यात्व में गया, अजगण्य के साथ लंबा रहा,
और अंत में
फिर सम्यक तो प्राप्त करके फिर विसंयोजना के, तो दो बार जगन्य हुआ। उसका बीच का अंतर है कुछ कम, अपनी अपनी स्थिति। ये विशेषार्थ की चौथी लाइन। और अंतर्मूर्त तक अजगण्य अनुभाग वाला रहकर समय दृष्टि होकर पुनः अनंतानुबंधी का विसर्जन करके जगन्य अनुभाग वाला हो जाता है, तो जगन्य अनुभाग का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है। एक अंतर्मूर्त में दो बार वो विसंयोजना की, एक बार की फिर मिथ्यात्व में आया, फिर सम्यक तो प्राप्त किया, फिर अंतर्मूर्त में विसंयोजना की। इसी प्रकार उत्कृष्ट अंतर भी घटा लेना चाहिए। ये तो हमने अभी पढ़ा, देखो अब तिर्यंचों में उत्कृष्ट अंतर कैसे घटा लेना। उत्कृष्ट अंतर के लिए क्या करना, दो बार विसंयोजना चाहिए। अंतर्मूर्त में दो बार करता है तो जगन्य अंतर हुआ, और आयु के स्टार्टिंग में और अंत में विसंयोजना करता है तो उत्कृष्ट अंतर होगा। तो दूसरे नरक से लेकर आगे अपनी अपनी आयु प्रमाण। अब सातवें नरक में घटाना है तो कितने काल पहले वो मिथ्यात्व में आता है, वो एकदम लास्ट तक नहीं जाना, क्योंकि अंत में फिर उसको मिथ्यात्व में लाना है ना, उसके थोड़े काल पहले। ख्याल आती बात? तिर्यंचों में देख रहे थे हम, तिर्यंचों में कोई सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव अजगण्य अनुभाग का घात करके जगन्य अनुभाग वाला हुआ। यतः मैंने क्योंकि उसके यह जगन्य अनुभाग अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं रहता। ये तो नियम है सबका, जो जगन्य होता है वो अंतर्मूर्त तक ही रह सकता है, ज्यादा नहीं। किसमें, जिन्होंने वो घात वगैरह किया है उसकी बात चल रही। अतः अनुभाग का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। कौन से अनुभाग का, अजगण्य का ना, अजगण्य का लिखा है क्या ऊपर? ये विशेषार्थी पढ़ रहे हैं।
ये जगन्य का अंतर हो जाएगा ना,
जगन्य का कैसे, जगन्य में अंतर मूर्त तक रहा तो अजगण्य का अंतर हुआ।
जगन्य का नीचे पता है।
और यदि अंतर्मूर्त के बाद उस अजगण्य अनुभाग का घात करके पुनः जगन्य अनुभाग वाला हो जाता है तो जगन्य अनुभाग का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त तो के ऊपर रखा होने से वह उक्त प्रमाण कहा है। देखो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा ना, तो वो अजगण्य होना चाहिए था। देखो जहां से नीचे से एक दो तीन चार वह अनुभाग का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर कहा है ना, अजगण्य अनुभाग का चाहिए। नहीं नहीं, अजगण्य का, अजगण्य अनुभाग का देखो मैं फिर पढ़ती हूँ। नीचे से पांचवी लाइन में यतः लिखा है, वहां से पढ़ूंगी। यतः उसके यह जगन्य अनुभाग, किसके, वो एकेंद्रिय में जिसने जगन्य किया है वो जगन्य अनुभाग अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं रहता। अतः अजघन्य, यहाँ अजघन्य शब्द डालो, अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर, अंतर्मूर्त कहा है, और यदि अंतर्मूर्त के बाद उस अजघन्य अनुभाग का घात करके पुनः जघन्य अनुभाग हो वाला हो जाता है, तो जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होने से वो उक्त प्रमाण है, इसका भी अंतर्मूर्त घटित होता है। तथा परिणामों के अनुसार असंख्यात लोक काल का अंतर प्राप्त होने से उत्कृष्ट अंतर उक्त प्रमाण कहा है, किसका? जघन्य का, जघन्य का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक, और अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त। अब इंद्रिय की अपेक्षा कहेंगे। इंद्रिय की अपेक्षा एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तकों में मोनीय कर्म के जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। क्यों? अपर्याप्त में रहने का काल ही अंतर्मूर्त है। तथा इन सबके अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तक, बादर एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तक, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक, समस्त विकलेंद्रिय, समस्त विकलेंद्रिय पर्याप्तक, समस्त विकलेंद्रिय अपर्याप्तक और पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों में मोनीय कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का अंतर नहीं है। ऐसा क्यों कहा? आपको पता चला? देखो, ये जो अभी हमने मार्गणाएं देखी है, इसमें पंचेंद्रिय को छोड़ा है, इंद्रिय की अपेक्षा पंचेंद्रिय को छोड़ा। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रियों में जघन्य कब होता है? पंचेंद्रियों में जघन्य कब होता है? दसवें के अंत में। हाँ, इसलिए पंचेंद्रिय वालों को छोड़ा। अश्विन में गड़बड़ करते तो सबको अच्छा लगता है। और बाकी जो है जघन्य, वो किसके? जो सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त में से जघन्य करके इनमें जन्म लेता है, उनके जघन्य कब होता है? आयु के स्टार्टिंग में। फिर दोबारा जघन्य होने का कोई चांस नहीं, इसलिए जघन्य का अंतर नहीं। अब जो ऑलरेडी अजघन्य के साथ ही उसमें जन्म लिया है, उसको भी जघन्य होने का चांस नहीं है, इसलिए उसके भी अनुत्कृष्ट में, बीच में, अजघन्य में बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। ख्याल में आई बात कि दोबारा बताओ? नहीं, दसवें गुणस्थान किसमें होगा? पंचेंद्रियों में होगा। अब उन पंचेंद्रियों को छोड़ो, पंचेंद्रियों लेना है तो पंचेंद्रिय अपर्याप्त को ले लो, क्योंकि अपर्याप्तकों में कोई दसवां गुणस्थान तो नहीं होता। इसलिए इन सभी मार्गणाओं में जघन्य अनुभाग कौन सा वाला होगा? तो जो एकेंद्रिय में जिसने अनुभाग का घात करके, जिसको तो समुत्पत्ति कहा था, वो जघन्य होगा। वो जघन्य उसने किया और मरकर ये कहीं भी इसमें आया। देखो, इसमें एकेंद्रिय भी लिए, पर कौन कौन से लिए? सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त को लिया, अपर्याप्त को नहीं लिया था, क्योंकि जघन्य करने वाले अपर्याप्तक है, इतना जघन्य और कोई जीव नहीं कर सकते। हाँ, उसमें उस अनुभाग के साथ जन्म तो ले सकते हैं, तो एक बार जन्म लेने के बाद वो बढ़कर बांधेंगे तो अजघन्य ही रहेगा उनका, वापस जघन्य नहीं हो सकता, इसलिए उसमें अंतर नहीं कहा। ये सभी मार्गणा ऐसी है ना, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा उसके इतने भेद किए, यही समझना कि सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक में ही ये जघन्य हो सकता है। तो एकेंद्रिय इन जनरल बात की थी, तो कोई जो सूक्ष्म ने जघन्य किया, अब वो अन्य पर्याय में चला गया और वापस जघन्य किया, तो बीच में बड़ा से बड़ा अंतर कितना होगा? तो असंख्यात लोक, सामान्य एक इंद्रिय ले लो, या केवल सूक्ष्म एक इंद्रिय भी ले ले तो भी चलेगा, या सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तकों में भी वो उत्कृष्ट अंतर।
लोकप्रमाण काल तो बादर में रहने का काल देखा था
असंख्यात। हाँ हाँ, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तकों में भी जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक कहा है, परंतु अपर्याप्तकों में तो अंतर अंतर्मूर्त ही होगा, लगातार अपर्याप्त में रहने का अंतर्मूर्त, परंतु सूक्ष्म एक इंद्रिय में रहने का काल कितना है?
अंगूर के असंख्यात पे बात करें,
सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त मिलकर
असंख्यात
लोक, और एक इंद्रियों में भले लंबा काल है परंतु वो लंबा काल वो सूक्ष्म में गए बिना नहीं बिताएगा, यानी इतने काल के बाद सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त में जाएगा ही, इसका ही अर्थ होता है। वो
बादर पर्याप्त अपर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है?
बादर जीवों में रहने का वो तो अंगुल के असंख्यात विभाग, अंगुल के असंख्यात विभाग।
अच्छा, आई वाज अंडर इंप्रेशन के बादर में
कायिकों में हमने देखा था, पृथ्वी कायिक, एक एक कायिकों में रहने का काल असंख्यात लोग देखा था।
वो तो
कर्मस्थिति प्रमाण, कर्मस्थिति प्रमाण देखा था। ये असंख्यात लोग जो है ना, सूक्ष्म जीवों का काल है एक इंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में मिलकर, अकेला अपर्याप्त लो तो भी अंतर्मूर्त, अकेला पर्याप्त लो तो भी अंतर्मूर्त।
सो बादर में रहने का काल कम है, सूक्ष्म में रहने का काल ज्यादा है।
हाँ बादर में रहने का काल अंगुल के असंख्यात विभाग,
तो बहुत कम हो गया।
और वो असंख्यात लोक, अंगुल कहाँ और लोक कहाँ, और वो अंगुल का असंख्यात विभाग किया और लोक को असंख्यात गुणा किया। तथा देखो, ये हम इंद्रिय मार्गना में चौथी लाइन देख रहे हैं, तथा इन सब के नहीं, ये तो हमने पढ़ी लिस्ट ना अभी। हाँ, इनमें अंतर नहीं, ये बात देखी अभी हमने, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त को में मुनि कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का अंतर नहीं है, उसमें भी अंतर नहीं, इसमें भी अंतर नहीं, परंतु दोनों का कारण अलग अलग है, क्योंकि उसका जघन्य दसवें के अंत में होगा पंचेंद्रियों में, और बाकी में एक इंद्रियों में होता है। काय की अपेक्षा, अभी कायिक कहेंगे, पृथ्वी काय वगैरह अलग अलग बताएंगे। काय की अपेक्षा पृथ्वी काय, जल काय, तेज काय, वायु काय, तथा इनके बादर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति काय पर्याप्त, बादर वनस्पति काय प्रत्येक शरीर, तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, और सूक्ष्म निगोद पर्याप्तकों में, इन सब में किसको छोड़ा? इतनी हमने जो लिस्ट देखी है,
सूक्ष्म अपर्याप्त को छोड़ा।
हाँ, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त को छोड़ा, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु के बादर भी लिए, सूक्ष्म भी लिए, पर्याप्त भी लिए अपर्याप्त भी लिए, सूक्ष्म वनस्पति कायिक में पर्याप्तक लिए, सूक्ष्म वनस्पति कायिक तो सूक्ष्म निगोद ही होते हैं, परंतु उसमें पर्याप्त लिए, अपर्याप्त को छोड़ा, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर उनके अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए, बादर निगोद भी लिए उनके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए, और सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त के लिए
अपर्याप्त छोड़ दिए,
तो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तों को ही छोड़ा है यहाँ पर,
जिसमें मिनिमम हो सकता है।
तो अभी इन सब में मोहनीय कर्म के, कम के हुआ कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग का अंतर नहीं है, तो हम अभी तक तो सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त कहे थे, अभी और स्पेसिफिक करना है तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त हो जाएंगे, है ना ये बात? तो इसके जगन्य और अजगन्य का अनुभाग का अंतर नहीं, क्यों अंतर नहीं? इनमें जगन्य के साथ जन्म तो लेंगे परंतु दोबारा इतना जगन्य नहीं होगा। वनस्पति कायिक, अब इन जनरल लिया, सूक्ष्म वनस्पति कायिक, उसमें भी वो सूक्ष्म निगोद आ ही गए और सूक्ष्म निगोदिया जीवों में निगा दया हुआ, निगोदिया गो और दी करना, मुनि कर्म के जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। सूक्ष्म निगोदिया इन जनरली बात पर्याप्त पर्याप्त को मिलकर और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक है। अकेले सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त में घटित करना है तो अंतर्मूर्त ही होगा।
दोनों का मिलकर
देखो, केवल हमने इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा हमने सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त इतना ही लिया था, उसमें और स्पेसिफिकेशन करने के लिए भी जब कायिकों की बात आई थी उसमें सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तकों में ही जघन्य में जघन्य होगा। ऐसा जीव अन्य में जन्मा है, सूक्ष्म निगोद पर्याप्तों में भी जन्मा है, तो भी क्या होगा? जघन्य के साथ जन्म तो लेगा परंतु अंतर नहीं होगा। तो अंतर कहां घटित होगा? अकेले वनस्पति कायिक इतनी बात करेंगे तो हां अंतर है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक वो वनस्पति कायिक का भेद है। तो उसने एक बार जघन्य किया फिर अजघन्य हुआ और जाने कहीं जाने के मोख भेजो मत के ही उसको, फिर दोबारा उसने किया तो अंतर्मूर्त होगा उसका अंतर। उत्कृष्ट अंतर के लिए अन्यत्र भेज सकते हैं, तो उत्कृष्ट अंतर के लिए कितना कहेंगे? असंख्यात लोक। ये हमने देखे थे, अभी हम देखते आए हैं, सर्वत्र असंख्यात लोक है उसका। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यानी ये जो अजघन्य करते हैं तो उसका जघन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त होता है। क्योंकि जघन्य कितने काल तक रह सकता है? अंतर्मूर्त तक, वो अजघन्य का अंतर कहलाएगा। जैसे हमने उत्कृष्ट रह सकता है अंतर्मूर्त तक, वैसे जघन्य भी रह सकता है अंतर्मूर्त तक। इसी प्रकार इनके अपर्याप्तकों में भी जानना चाहिए, किनके? वनस्पति कायिक के, सूक्ष्म वनस्पति कायिक के और सूक्ष्म निगोदिया के। किंतु इतनी विशेषता है, इनमें दोनों प्रकार का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपर्याप्तकों की स्थिति ही अंतर्मूर्त की होती है। त्रस त्रस पर्याप्तक और त्रस अपर्याप्तकों में मोहनीय कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का अंतर नहीं है। त्रस और त्रस पर्याप्तकों में क्यों नहीं अंतर? अभी सूक्ष्म सांप्राय में होता है, दसवें के अंत में। और त्रस अपर्याप्तकों में क्यों नहीं अंतर? क्योंकि वो तो सूक्ष्म निगोद में से आया है जी, इसलिए फिर दोबारा उसका उतना जघन्य नहीं होगा, इसलिए दोनों में तीनों में अंतर नहीं है। विशेषण एकेंद्रियों में, वो यो के पहले एक वेलांटी गलती से हुई है, एकेंद्रियों में और सूक्ष्म एकेंद्रियों में तिर्यंचों के समान स्पष्टीकरण है, किंतु सूक्ष्म अपर्याप्तकों में जघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट अंतर भी अंतर्मूर्त ही है, क्योंकि बार बार जन्म लेने पर भी कोई जीव अपर्याप्तकों में अंतर्मूर्त से अधिक काल तक लगातार जन्म नहीं ले सकता। शेष सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तक आदि में अंतर नहीं है, जो हमने बड़ी लिस्ट देखी थी, क्योंकि जघन्य अनुभाग के साथ जन्म लिया उसमें दोबारा जघन्य नहीं करेगा, क्योंकि हतसमुत्पत्ति कर्म द्वारा जघन्य अनुभाग करने वाला जीव उनमें जन्म तो ले सकता है किंतु उन मार्गनाओं में जघन्य अनुभाग करना संभव नहीं है। इसका अर्थ समझ में आता है? उसके अपने परिणामों के कारण वहाँ उसका फिर अनुभाग का घात हो जाए और जघन्य हो जाए, ये बात नहीं बन सकती। जैसे सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त में होती है वैसे यहाँ नहीं बनेगी। इसी प्रकार पृथ्वी कायादिक में भी अंतर का अभाव जानना चाहिए। अंतर का अभाव है ने वो जघन्य के साथ जन्मा है परंतु उसका अंतर नहीं होगा, केवल वनस्पति कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक और सूक्ष्म निगोदिया जीवों में अंतर होता है जो सूक्ष्म एकेंद्रिय की तरह समझ लेना चाहिए। योग की अपेक्षा। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैकृक काय योगी, वैकृक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगियों में मोहनीय कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग का अंतर नहीं है। देखो क्यों नहीं है वो देखेंगे। जो पांचों मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, इनमें तो दसवां गुण स्थान है, तो जघन्य होने के बाद फिर अजघन्य होने का सवाल नहीं, और तब तक तो अनादि से अजघन्य ही था, तो दोनों का अंतर नहीं है। ख्याल में आई बात? अब वैकृत काय योगी में क्यों नहीं अंतर है? हाँ भाई जोशी साहब, आपको पता है वैकृत काय योगी में जघन्य किसके होगा?
दो बार
उपशम श्रेणी चढ़कर जिसने एक क्षपणा की है, अब ऐसा जीव देवों में उत्पन्न हुआ है,
जघन्य ही रहेगा।
हाँ, तो उसका थ्रू आउट उतना ही रहेगा ना, वैकृत काय योग का जो अंतर्मूर्त है तो जघन्य का जघन्य ही रहेगा, अजघन्य के साथ आया हुआ अजघन्य ही रहेगा, तो उसमें वहां जाकर कोई जघन्य होने का सवाल नहीं है, इसलिए उसका अंतर नहीं। वैकृत मिश्र काय योगी में जघन्य किसके होगा? असंगी में से आए हुए, वो भी जघन्य के साथ आया है, दोबारा जघन्य नहीं होगा बीच में अजघन्य होके।
वैकृत मिश्र काय योगी था,
हमें अंतर देखना चाहिए ना, उसमें जघन्य किसके होगा? असंगी में से आए हुए। कार्मण का योगी, कार्मण का योगी का जघन्य तो सूक्ष्म निगोद में से भी आया हुआ दे सकते हैं, परंतु जितना है उतना रहेगा, उसका फिर दोबारा जघन्य होने का सवाल नहीं है जब तक कार्मण का योग में। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी में उसकी अपेक्षा जो जघन्य है वो जघन्य रहेगा, अजघन्य है वो थ्रू आउट अजघन्य रहेगा, क्योंकि आहारक काय योग की अवस्था में ना कोई अनुभव यानी सपना आदि का कुछ कार्य नहीं होता है, इसलिए उनका अंतर नहीं कहा। औदारिक मिश्र काय योगियों में सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त के समान भंग है। कैसा भंग है? उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा?
औदारिक मिश्र काय योग में हाँ होगा ना,
क्यों होगा और तो नहीं तो क्यों नहीं होगा?
रुजुगति जो सूक्ष्म अपर्याप्त,
रुजुगति की जरूरत ही क्या है? सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त है, उसके तो थ्रू आउट औदारिक मिश्र काय योग ही है, तो वो जघन्य भी करेगा अजघन्य भी करेगा, तो उसमें अंतर पाया जाएगा। और लगातार औदारिक मिश्र में रखो उसको, अंतर्मूर्त तक तो रहेगा ही। लक्ष्मी ख्याल आया? नहीं आए? देखो अपना अभी कौन सा योग चल रहा है? औदारिक मिश्र का योग, उसमें जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त। हाँ, वो तो औदारिक मिश्र वाला ही है अंतर, क्योंकि वो दो बार करेगा ना जघन्य। अभी हमने क्या, अभी जो जघन्य ओग की अपेक्षा भी या तिरियंचो में जो जघन्य हमने देखा था किसके होता है? इन जीवों के होता है। अभी ऊपर देखो, देखो अभी ऊपर जो हमने वनस्पति कायिक का देखा है ना, ऊपर का पैराग्राफ एकदम, उसमें तीन बातें तीन जीव के लिए थे, वनस्पति कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म निगोदिया, उनमें जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर कितना है? अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक लिया था क्योंकि वो वनस्पति कायिक इतना लिया था। अभी यहां अपनी मार्गणा कौन सी? औदारिक मिश्र। तो औदारिक मिश्र लगातार किसके रहेगा? लब्धि अपर्याप्तकों के। उसका कितना काल है? अंतर्मूर्त। तो इसलिए जगन
रुजुगति से लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि वहाँ पे
हाँ रुजुगति से, रुजुगति से लेना,
औदारिक मिश्रा ही लेना चाहिए,
औदारिक मिश्रा, औदारिक मिश्रा, औदारिक मिश्रा, परंतु वो है अपर्याप्त, तो अपर्याप्त में लगातार काल तो अंतर्मूर्त ही होगा, इतनी बात है उसमें। इसलिए सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त के समान भंग कहा। देखो ये सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त है ना, वो 50 पृष्ठ पर 77 नंबर का जो पॉइंट था 77, उसमें भी पहली लाइन में लिखा, देखो मिला, एकेंद्रीय सूक्ष्म एकेंद्रीय, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तकों में मौन्य कर्म के जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, वहां तो सभी लेने थे ना, और सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तकों में तो उन्होंने नीचे लिखा था कि उनका तो अंतर्मूर्त होता है, यही बात यहाँ समझनी। अब वेद की अपेक्षा, अब जघन्य घटित कर रहे हो, वेद की अपेक्षा स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुसक वेदियों में मौन्य कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग का अंतर नहीं है। क्यों नहीं है?
जघन्य तो नपुसक वेद,
बोलो, नपुसक वेद में
नपुसक वेदी जो जघन्य करके स्त्री वेद में या पुरुष वेद में उत्पन्न होता है?
ना ना ना,
अच्छा ये सूक्ष्म संप्राय में,
सूक्ष्म संप्राय में होता ही नहीं है, सूक्ष्म संप्राय भी नहीं होता है, सवेद भाग का अंतिम समय, सवेद भाग का अंतिम समय, सवेदी कब होता है? नौवे गुणस्थान के शुरू में पहला भाग, उसके अंत में इसका वेद का उदय मिटेगा, तब तक उसको वेद वाला कहेंगे, परंतु नौवा गुणस्थान है तो उसके पहले अपूर्व करण और इसके नौवे में भी अनुभाग कांडघात हुए हैं, तो वहां पर इसका मिनिमम पॉसिबल, इनके लिए मिनिमम पॉसिबल, आगे अपगत वेदी होने पर और अनुभाग घटेगा उसकी बात नहीं है, स्त्री वेद के रहते हुए किसी जीव के मिनिमम अनुभाग कहाँ होगा? तो स्त्री वेद के उदय का अंतिम समय, वो भी क्षपक श्रेणी में लेना, तीनों ही वेदों में यही बात लेना है। तो कहते उसके जघन्य का अंतर नहीं, क्योंकि अभी वो वेद का अंतिम समय है, वहीं पर जघन्य है, उसके पहले तो अजघन्य ही था, इसलिए अंतर नहीं है। इसी प्रकार अपगत वेदी, कॉमा लगाना, अपगत वेदी में जघन्य किसके होगा? याद है? हाँ, अपगत वेदी में सूक्ष्म क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय भी अपगत वेदी है, तो उसका जघन्य है, तो उसका फिर जघन्य दोबारा होने का सवाल नहीं है, और जो अजघन्य है वो
तो
अजघन्य जब जघन्य हो जाएगा फिर वो अजघन्य होने का सवाल नहीं है, इसलिए दोनों में ही अंतर नहीं है। जघन्य का अंतर नहीं कि दो बार जघन्य नहीं होगा, अजघन्य नहीं क्योंकि जो अजघन्य के साथ आया है जब जघन्य हो जाएगा तो वापस अजघन्य होने का सवाल नहीं है, इसलिए अंतर नहीं है। ये अपगत वेदी में भी अंतर नहीं है। चारों कषाय वाले, ये हमें स्वामित्व देखेंगे तो ख्याल में आता है, चारों कषाय वालों में जघन्य अंतर कब होता है, जघन्य कब होता है, अंतर की बात छोड़ो अभी,
कषाय के उदय के लास्ट समय में,
कषाय का उदय का अंतिम समय क्षपक श्रेणी में, इसलिए उनका भी अंतर नहीं होगा। कषाय रहित जीव
दसवें गुणस्थान के अंत में,
ग्यारहवा गुणस्थान,
दसवें के अंत में जघन्य हो जाएगा, अच्छा ग्यारह में कांडक,
ग्यारहवा में उपशम श्रेणी वाला ही लेना है। अब उपशम श्रेणी में भी दोबारा दो बार जिसने उपशम श्रेणी चढ़ी है वो ग्यारहवें में आते ही उसके
कांडक कम्प्लीट होगा तभी जघन्य हो जाएगा,
कांडक वहाँ होता ही नहीं,
जो आगे कांडक हुआ था उसका
ग्यारहवें में आते ही उसका जघन्य हो गया, यानी जघन्य के साथ वो ग्यारहवें में आया और कोई अजघन्य के साथ ग्यारहवें में आएगा, दो बातें ली हैं। यानी जो एक बार उपशम श्रेणी चढ़ा था पहली बार, तब उसने कुछ घटाया, फिर दोबारा चढ़ा तो और कुछ घटाया, तो उस जीव के जघन्य पाया जाएगा। दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया ना, कषाय रहित जीव, आभी निबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, ये सारे जो सम्यक दृष्टियों संबंधी है, तो जघन्य के बाद, जघन्य करने के बाद फिर उस पोजीशन में अजघन्य नहीं होगा। मन परे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत। आपने कल पूछा था ना, श्रेणी उतर के फिर उसका बढ़ेगा कि नहीं, अब अनुभाग बढ़े, नहीं बढ़ेगा। यथाख्यात संयत, संयता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, क्योंकि इन दोनों में भी दसवा गुण स्थान संभव है, तो उनमें भी जघन्य के बाद अजघन्य नहीं होगा, और जघन्य का भी अंतर नहीं और अजघन्य का भी अंतर नहीं। अवधि दर्शन वाले, शुक्ल रेशा वाले, भव्य सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, क्षायिक वेदक सम्यक दृष्टि में ये स्वामित्व किसके होगा, जघन्य का स्वामित्व। वेदक सम्यक दृष्टियों में मौन्य का जघन्य अनुभाग किसके होता है, हाँ, कहां पर लेना उसको, क्षपणा करने वाले को कहां पर लेना, किस पोजीशन श्रेणी में, तो वेदक सम्यक तो होगा ही नहीं, हाँ। यानी श्रेणी चढ़ने के पहले देख, आपको याद है कृतकृत्य वेदक होते समय
दो बार श्रेणी चढ़ के उतरा है,
हाँ, वेदक समय दृष्टि है, तो वेदक समय दृष्टि होने के पहले दो बार, हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, वेदक हुआ, और फिर वो क्षायिक होने जा रहा है, कृतकृत्य वेदक हो गया
पहले समय,
तो पहले ही समय से उसका जघन्य है, अंतर्मूर्त तक वो जघन्य ही रहेगा, उसमें और कटौती नहीं होगी। जैसे दसवें गुणस्थान में हम अंतिम समय में घटित करते हैं, वैसे यहाँ कृतकृत्य के अंतिम समय में नहीं घटित करना। कल देखा था ना हमने, उसका जघन्य अंतर्मूर्त तक रहता है, काल उसका भूल गए, निकालो निकालो, काल में उसका वेदक समय दृष्टियों के जघन्य का लगातार काल अंतर मुहूर्त देखा था, निकालो, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी ना अपने,
कल ही देखा था,
हाँ कल ही देखा था, 40-41 कहीं होगा उसमें। किसके देखते रहे थे हम भी, नहीं नहीं नहीं, वेदक सम्यक दृष्टि, सम्यक तो मार्गना, हाँ 42 पर आ गए क्या, मैं 40 पर ढूंढ रही हूँ, 42 देखो बीच में ही है, 57 नंबर के पॉइंट बीच में मिला प्रतिभा ताई, देखो वेदक सम्यक दृष्टियों में छठी लाइन, मौन्य कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जघन्य कब होता है, कृतकृत्य के पहले समय से होता है, तो यहाँ एक समय नहीं कहा, अंतर्मूर्त कहा है। और अजघन्य का तो, अजघन्य तो उत्कृष्ट काल 66 सागर होगा, अब आना फिर अपने
ये जो मौनीय में जो जघन्य होता है वो एक स्थानीय होता है, ऐसे जो ज्ञानावरणीय और उसमें जो जघन्य होगा वो एक स्थानीय नहीं हो सकता है कि वो भी एक स्थानीय होगा,
ज्ञानावरणादि में क्या क्या होता है ना, क्योंकि वो सो
क्योंकि केंद्रीय में जो
क्षपणा में होता है, उसमें ऐसे से अलग अलग प्रकृतियों के कहाँ किसका देशघातीकरण होता है उसको देखेंगे। नवे गुणस्थान में जब क्षपणा होती है तो उसको कहते हैं देशघाती करण नाम का एक करण होता है। तो जितनी प्रकृतियां हैं वहां पर अशुभ, उसका देशघाती होता है।
नहीं, पर जो एकेंद्रीय में जो जगन्य ज्ञानावली में होगा वो चार स्थिति वाला होगा के दो स्थिति वाला होगा के एक स्थिति वाला होगा?
एकेंद्रीय में तो ज्यादा है ना उसका अनुभाग,
तो
अनुभाग ज्यादा है। यहाँ मोहनीय का तो कैसे ऊपर के गुणस्थानों में तो अनुभाग घट रहा है सब। हाँ देखो, वैदिक समय दृष्टि देखा हमने 52 पेज पर, क्षायिक समय दृष्टि, ये सब मार्गणा देखे कि इसमें अंतर नहीं है। क्षायिक समय दृष्टियों में जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म संप्राय। उपशम समय दृष्टि दूसरे बार, हाँ 11वें से लेकर उसके जघन्य होगा, उतरेगी तो भी जघन्य ही रहेगा। संसाधन समय दृष्टि, क्योंकि उपशम में जिसने जघन्य किया वही आएगा नीचे। सम्यक मिथ्या दृष्टि वैसा ही लेना। संगी जीव, संगी में तो लेना है 10वां गुणस्थान, आहारक में भी 10वां, अनाहारक जीवों में जानना चाहिए। अनाहारकों में किसको लेना? एकेंद्रीय में से जिसने सूक्ष्म करके कारमान का युग में आया है ऐसा जीव लेना। तो उनमें अंतर नहीं है, इतनी बात हमने देखनी है। मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानियों में मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, जो हमने अभी एकेंद्रियों में देखा था। और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक है, याद आए ना, अभी हमने देखा था ना एकेंद्रिया आदि में। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त में तो करने वाला जीव है, उसका अंतर जब हम मति अज्ञानी ही रहा तो एक बार, यानी मिथ्या दृष्टि ही है, एक बार जघन्य किया और फिर वापस लौट कर उसके करना है तो असंख्यात लोक प्रमाण काल जाएगा बीच में।
ये मति अज्ञानी में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन नहीं ले सकते?
नहीं, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन में आपको बिना सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त को रखना पड़ेगा, वो नहीं होता।
नहीं, यहाँ पे तो मार्गणा हमारी मति अज्ञानी है।
मार्गणा मति अज्ञानी है,
हाँ।
तो
असंख्यात पुद्गल परिवर्तन नहीं ले सकते?
नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें तो उसमें निगोद में जाना आवश्यक है। उस एक ये पर्याय को छोड़कर बाकी में रहने का काल असंख्यात लोक ही है। हमने अभी देखा था ना पृथ्वी कायिक आदि की भी अपेक्षा हमने देखी थी बात। अजघन्य अनुभाग का ये मति अज्ञानियों में अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। मति अज्ञानियों में जघन्य किसके होगा? वही वो जो अभी हम सूक्ष्म केंद्रीय में देखते हैं। हाँ। तो अजघन्य का अंतर कब होगा? जब बीच में जघन्य होगा। हाँ। तो जघन्य लगातार अंतर्मूर्त तक ही रह सकता है। अजघन्य में से जघन्य हुआ, अंतर्मूर्त के अधिक, उससे अधिक काल तक जघन्य नहीं रह सकता, वापस अजघन्य हो जाएगा। विभंग ज्ञानियों में, अब विभंग ज्ञानी में तो वो नहीं ले सकते एकेंद्रीय वाला। मोहनीय कर्म की जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का अंतर नहीं है, उसमें जो जघन्य के साथ आया है वो जघन्य रहेगा और अजघन्य के साथ अजघन्य रहेगा।
ये विभंग ज्ञानियों में जघन्य
निकल विभंग ज्ञानी में जघन्य याद है?
नहीं ले सकते,
दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के 9वें ग्रहवे में गया है।
हाँ। और वहाँ पे
और वहाँ पर जाके आयु के अंत में मिथ्या दृष्टि हुआ। हाँ। तो उसका तो जघन्य हुआ था, तो दोबारा ऐसा जघन्य नहीं होगा उसके, जो जघन्य वो जघन्य ही रहेगा।
हाँ।
असंगी को नगर नरक में जावे तो विभंग ज्ञान तो पर्याप्त अवस्था में प्राप्त होगा, तो वहां पर भी उनके लिए जघन्य वो नहीं कहला। सभी विभंग ज्ञानियों में कौन सा जघन्य ऐसा देख रहे हैं? विभंग ज्ञान जहां कहीं भी पॉसिबल है उन सभी में जघन्य किसके होगा, उसको यहां लिया है। वहां तो ऐसा भी कहा था, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हुए मनुष्य में भी जघन्य कहा था, ऐसे भी कहा था ना पहले। अभी कहा है हम, विभंग ज्ञानियों में देख रहे थे, असंयतों में मौन कर्म, हाँ अंतर नहीं है विभंग ज्ञानियों के बाद, फुल स्टॉप लगाना हो, दंड जिसको कहते हैं। अब असंयतों में, अब असंयत में वो सारे सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त भी आएंगे, इसलिए वहां एकेंद्रियों में जो हमने मति अज्ञानी में जो अंतर घटित किया था वो यहां भी होगा। तो कहते मौन कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक है। यानी वो जीव पंचेंद्रिय में आवे, अन्य पर्याय में जाए, असंख्यात लोक काल के बाद वो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त में जाएगा ही जाएगा, इसका अर्थ ही होता ना, इसी से सिद्ध होती है बात। सबको निगोद में क्यों भेजते हो? अरे वही हेडक्वार्टर है वही।
ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन में भी असंख्यात लोक प्रमाण काल जाएगा तो नियम से, वो
नियम से इससे सिद्ध होता है। ऐसा कहीं लिखित रूप से तो अभी हमने देखा ना, पर इससे क्या सिद्ध होता है? उसका उत्कृष्ट अंतर ही असंख्यात लोक है, इसका अर्थ उसके बाद वो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त तक में जाएगा, जघन्य भी करेगा। जिसको मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है उसकी दुर्लभता का ख्याल उसको नहीं आता है। ऐसा है ना, जो पैसे वाला होता है, पैसे वालों के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो जन्म से ही पैसे वाले हैं ना, तो उनको उसकी महत्ता नहीं है। तो जिनको याद है कि हमने पहले कैसे काल बिताया था और किस किस पोजीशन में रहकर अभी हमने पैसे कमाए हैं, तो वो तो बच्चों को कहते हैं अरे तुमको पैसे की वैल्यू नहीं है। ऐसे हमारा भी हो गया ना, क्योंकि पूर्व की तो याद नहीं है कुछ, अभी मनुष्य है तो बस मनुष्यपने में खाओ पियो और मौज करो। ये असंख्यात लोग कितना काल होगा, फिर भी वो एक इंद्रिय में से छूट नहीं रहा है, निगोद में वापस विसर दे रहा है। अभी असंयतों में अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, वो तो सब जगह देखा हमने, अजघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त होता है। कृष्ण नील कापोत तेज और पद्मलेशा में मौन्य कर्म की जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का अंतर नहीं है। कृष्ण लेशा में जघन्य किसके होगा?
सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त
तक, वही सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त तक में। तो एक बार जघन्य किया, फिर अजघन्य हुआ और फिर जघन्य किया, परंतु लेशा पलट गया। तो वहां भी लेशा का परिवर्तन होगा ना, तीन अशुभ लेशा में से उनका भी पलटना होगा। वही के वही लेशा तो नरक में होती है, तो कृष्ण लेशा वाला एक इंद्रिय और कृष्ण लेशा वाला नारकी, इसमें जघन्य किसके होगा?
नारकी में जो
मैं पूछ रही हूँ,
नारकी में
नारकी विसंयोजना करेगा तो क्या एक इंद्रिय के इतना अनुभव कम करे? नहीं करेगा, इसलिए उसको नहीं लिया। नहीं तो उसको ले लेते ना, दो बार विसंयोजना कराते। हाँ यहाँ क्या लिखा है, उसका अंतर ही नहीं है। वैसे ही नील में कपोत में अब कहते तेज और पद्म में तो होगा, तो नहीं होता है। उसमें जघन्य तो होगा अपनी अपनी लेशा में, परंतु उसका अंतर नहीं होगा, जघन्य वाला जघन्य रहेगा। अभव्यों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, जो एकेंद्रियों में घटित किया था, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक है। अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि और असंगियों में स के ऊपर बिंदी लगाएं, उनमें भी जानना चाहिए। विशेषार्थ, योग की अपेक्षा मनोयोग, वचन योग, काय योग और औदारिक काय योग वालों के क्षपक दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होता है, अतः अंतर नहीं कहा। ना जघन्य में अंतर है, ना अजघन्य में। वैक्रियक काय योग में सौधर्मादिक की तरह अंतर नहीं है, क्योंकि वैक्रियक काय योग होते हुए जघन्य किसके होता है? जो हमने सौधर्म में जघन्य देखा था, दो बार उपशम श्रेणी और क्षपणा करके आया हुआ जी। वैक्रियक मिश्र में नरक में जन्म लेने वाले हतस्म समुत्पत्तिक कर्मा असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा जघन्य अनुभाग होता है, उसमें भी नरक में पैदा किया हो, अतः उसमें भी अंतर नहीं है। आहारक और आहारक मिश्र में दोबारा उपशम श्रेणी पर चढ़कर उससे उतरकर दर्शन मुनि का क्षपण करके जो आहारक की उत्पादना करता है उसके जघन्य अनुभाग होता है, अतः उनमें भी अंतर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो तो इसका काल भी छोटा है और उस काल में अन्य कोई क्षपण आदि का कार्य नहीं होता है। कार्मण का काल थोड़ा है, अतः उसमें भी अंतर की संभावना नहीं है। अपने अपने योग्य इसी प्रकार के कारणों से, यानी अलग अलग मार्गणाओं में अंतर नहीं होने का कारण जुदा जुदा है, तो अपने अपने योग्य कारणों से शेष मार्गणाओं में अंतर का अभाव लगा लेना चाहिए। केवल जैसे हमने अन्य काय योग वगैरह देखे थे, उसमें अंतर नहीं था, केवल औदारिक मिश्र, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयमी, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी में अंतरकाल होता है, जो एकेंद्रीय की तरह लगा लेना चाहिए। यानी इतनी मार्गणाओं में वो अंतर होगा, सम्यक दृष्टि संबंधी मार्गणा में, संयम संबंधी मार्गणा में, वो कहीं उसके अंतर होगा ही नहीं। इस प्रकार जघन्य अनुभाग का अंतरानुगम समाप्त हुआ। अब ये नया विषय कल से शुरू करेंगे, नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देता हो। दोषी सर।